मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हमेशा की तरह आज भी हम लोग जब एक साथ बैठे हैं तो हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इस पर कुछ विचार कर लेना चाहिए। श्रेष्ठ विचार श्रेष्ठ आचरण के लिए सहयोगी होते हैं, और जिनका श्रेष्ठ आचरण होता है उनके पास श्रेष्ठ विचार भी होते हैं। दूसरे के विचारों से अपने जीवन को अच्छा बनाना और अपने जीवन की अच्छाइयों से अपने भीतर स्वयं ही श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करना, ये एक विशेष सर्कल अगर हमारे बीच डेवलप हो जाए, अगर हम इस तरह करने लगें तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा ना हो। जैसे अपन नदी देखते हैं, बहती है नदी और एक निश्चित दिशा में बहती चली जाती है, फिर वो नदी एक दिन समुद्र में जाके मिल जाती है। कोई कोई नदियां ऐसी भी होती हैं जो समुद्र तक नहीं पहुंचती और किसी मरुस्थल में खो जाती हैं। नदी दोनों तरह से नष्ट हो जाती है, नदी समुद्र में जाकर के मिले तब भी, और चाहे वो मरुस्थल में जाकर के खो जाए तब भी, दोनों स्थितियों में नदी शेष नहीं रहती है। हमारा जीवन भी ठीक इसी तरह से, भी हमारे जीवन की धारा भी ऐसी ही है, या तो हम संसार के मरुस्थल में अपने जीवन को खो देते हैं और या फिर हम अपने उस परम अवस्था को प्राप्त करके जैसे नदी समुद्र में गिरती है वैसे हम अपने जीवन को भी प्राप्त कर लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उस पर मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है। पिछले दिनों हम इस बात पे बहुत विचार कर चुके हैं कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना चाहिए, और मेरे ख्याल से हम सब अपने जीवन का लक्ष्य, मैं तो ये मान के चलता हूं, आशावादी होना ही पड़ता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम सब ने अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य तो तय ही किया है। हो सकता है कि जो लक्ष्य मैं चाहता हूं वो आप ना चाहें, और हो सकता है जो लक्ष्य आपने तय किया हो वो मुझे पसंद ना हो, ये तो अपनी अपनी चॉइस है, इसमें किसी का कोई वश नहीं है, ना मुझे उस टॉपिक पे कोई बात करनी है। हम सब स्वतंत्र हैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। मुझे सिर्फ ये बात करनी है कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा सा लक्ष्य अगर आपने बनाया है, हम सब ने कोई ना कोई लक्ष्य अपने जीवन का बनाया होगा, हम क्या करें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करें। वैसे तो पिछले दिनों हमने कर्म के बारे में विचार किया था कि हम जो भी कर्म करें उसको ध्यान रखें कि उससे स्वपर कल्याण होना चाहिए, हमारा कर्म अपने और दूसरे के कल्याण के लिए हो, ऐसा ना हो कि हम अपना कल्याण तो करें और दूसरे का कल्याण हो जाए, ऐसा होता नहीं है। मजा ये है जो व्यक्ति अपने कल्याण की बात सोचता है उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे का अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अगर मैं दूसरे का अकल्याण करने की सोचता हूं तो अल्टीमेटली अकल्याण तो मेरा ही होगा, और अगर वो दूसरे का कल्याण करने की सोचता है तो दूसरे का कल्याण हो या ना हो खुद का कल्याण तो हो ही जाएगा। दोनों ही चीजें, अगर हम अपने कल्याण की बात सोचें तब भी दूसरे का और अपना कल्याण है, और अगर दूसरे के कल्याण की सोचें तब भी दूसरे का और अपना दोनों का। किसी भी कंडीशन में अगर हम कल्याण का विचार रख के कर्म करते हैं तो वही हमारे लक्ष्य को निर्धारित कर देता है। और दूसरी चीज, हमें कर्म करके भी प्रसन्नता क्यों नहीं मिलती, हमको शांति क्यों नहीं मिलती, जिसको अपन कहते हैं ना कि इतो सब करो वो के बाद भी हाव हाव लगी है, क्या क्या बात है आखिर। मैं कई बार सोचता हूं इस चीज को कि कितने भी पालें कितने भी कर लें लेकिन इसके बाद भी एक अनसेचुरेशन की कंडीशन बनती है, एक बड़ा असंतोष जैसा मन के अंदर मालूम पड़ता है। हम थोड़ा सा बच्चों की तरफ देखें, बच्चों के साथ थोड़ा सा बिताएं समय, देखें अपन कि वो कैसे काम करते हैं। वो पढ़ने में लगे हैं तो ऐसे भिड़ जाएंगे कि आजू बाजू क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं। वो अपना रेत का घरौंदा बना रहे हैं तो फिर दुनिया एक तरफ हो गई और उनका रेत का घरौंदा एक तरफ। हो सकता है कि वो 5 मिनट में खुद लात मार के और वापस चले जाएं उसको मिटा करके, लेकिन जब वो बना रहे हैं तो बना रहे हैं, बस वो मस्त हैं उसमें बनाने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कोई भी कर्म करें तो अहम शून्य होकर के करें। हम लोग अहंकार पूर्वक करते हैं और जब हमारे मन का हो जाता है तो हमारा अहंकार थोड़ा एकाध इंच बढ़ जाता है। हाँ, घटता वटता नहीं, बढ़ जाता। फिर जब अगर वो काम बिगड़ जाता है तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है तो वो घटता नहीं है बल्कि कसमसाता है वहीं पर, तो फिर वो किसी ना किसी तरह से निकलेगा, क्रोध के रूप में निकलता है, ईर्ष्या के रूप में निकलता है। ये सब जो है हमारे जीवन को और तकलीफ में डालने वाली चीज है। इतना सब करा और इसके बाद भी वहीं के वहीं। हमें कर्म करते समय अहंकार नहीं करना चाहिए, कर्म में हम निमित्त मात्र हैं। जब रामचंद्र जी स्वयंवर में और धनुष उठा लेते हैं और धनुष टूट भी जाता है, तब इसके बाद वहां लिखा है पद्म पुराण में कि रामचंद्र जी कहते हैं कि वस्तु की ऐसी ही योग्यता थी, उसी समय धनुष का काल पूरा होना था, टूटना था, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, मैंने नहीं तोड़ा है। दुनिया कह रही है कि आपने किया है, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन करने वाला कह रहा है कि वो उस क्षण की वस्तु की योग्यता है, परिणमन ऐसा ही होना था, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्रम भव सव्य साची। ऐसा ही जो है श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बार बार कहते हैं, अहंकार और वासना से प्रेरित होकर के कर्म मत करो, अहंकार से कर्म करोगे असफल होने पर संकलेश होगा, और अगर सफल हो जाओगे तो अहंकार और बढ़ जाएगा। हाथ क्या आया? हाथ में वही पीड़ा आई, वही दुख हाथ में आया। नहीं, मैंने किया नहीं है, मेरे द्वारा हो गया है, बाय द वे अचानक मैं सिर्फ निमित्त बन गया हूं। एक साधु जी निकलते थे, पेड़ के नीचे से गुजरे और थोड़े आगे बढ़े और एक व्यक्ति भागता आया और उन साधु जी के सिर पर लाठी मार दी। अब पता नहीं उसके मन में क्या भाव था। कई बार अपन लोग अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, नहीं आपको नहीं लगता ऐसा? अच्छे लोग अगर आ जाए अपने बीच में, बुरे लोगों के बीच में अच्छे लोग आ जाए तो उनको लगता कि हटाओ इनको। पहले जैसे होता ना कि एक पूरी चैन है जिसमें सब ईमानदार हैं और एक आध बेईमान आ जाए तो जरा दिक्कत होती थी, अब तो पूरी चैन में अगर एक आध ईमानदार आ जाए तो दिक्कत होती कि हमारा मामला गड़बड़ हो रहा है, ये आदमी बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे हो जाता कई बार, तो वो होता है। अब उसने लाठी मार दी, अब वो डरा भी कि साधु जी को लाठी लग गई है और अब मुझे पिटाई ना हो जाए, तो लाठी वाटी छोड़ करके वो भागा। तो साधु जी ने कहा कि बाबा तेने मुझे मारा सो तो ठीक है, लेकिन ये लाठी गए वो यहां छोड़ जा रहा है, काम आएगी तेरे, तू ले जा। उधर वो भाग रहा और ये साधु जी कह रहे हैं कि तू जो हुआ सो हुआ छोड़ उसको, लेकिन लाठी तो ले जा। तो तो जो लोग खड़े देख रहे थे उनने कहा, बाबा जी आप भी बड़े अजीब हैं, उसने आपके सिर पर इतने जोर से लाठी मारी और आप नाराज वाराज होने की जगह पर उसको आवाज दे रहे हैं कि बाबा तू अपनी लाठी तो ले जा। तो उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक मैं निमित्त बना हूं उसके कषाय के प्रकट होने में, उसके मन में लाठी मारने का विचार था, मैं निकला मेरे सिर पर पड़ गई, कोई और निकलता उसके सिर पर पड़ जाती, इसमें ज्यादा संक्लेश करने की क्या बात है। मैं कल पेड़ के नीचे से निकलता था, जैसे ही निकला एक लकड़ी उसमें से टूट करके मेरे सिर पे गिरी, अब मैं किसको जाकर के कहूं कि तैने मेरे ऊपर गिराई, वो तो पेड़ में से टूट के उसी समय टूट के गई, उसी समय मैं निकला, इसी तरह मैं निकला और उसकी लाठी मेरे सिर पे पड़ी, इसमें मुझे बुरा मानने की क्या आवश्यकता। ऐसा भी सोच हो सकता है, दिन भर में एकाध बार तो हो सकता है, हम ये थोड़ी कह रहे कि 24 घंटे हर हमेशा ही करो, एकाध बार ऐसा करके देखें, अगर उसमें मजा आए तो फिर कंफर्म हो गया कि हमारे मजा नहीं आने का, हमारे अशांत होने का कारण हमारे ही भीतर बैठा हुआ। हम इतने बढ़िया कर्म भी करते हैं, पूजा पाठ धर्म ध्यान स्वाध्याय अच्छे और सामायिक वामायिक बिल्कुल बढ़िया करते हैं, इस कई लोग करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा मन समता को प्राप्त नहीं होता, हमारे मन में कषाय भाव चलते ही रहते हैं। अरे इसका मतलब है कि मैंने कर्म को ठीक से नहीं किया, कर्म को स्वपर कल्याण की भावना से करना और अहम शून्य होकर के करना। और आज मुझे इसके आगे एक बात कहनी है कि जो भी हमने कर्म अपने जीवन में तय किया है हम उसे लगातार करने की आदत डालें, कंटिन्यू होना चाहिए। आज एक बात सीखेंगे, कर्म को लगातार करना आवश्यक है। वही उदाहरण हम ध्यान में रखें कि नदी जब बहना शुरू करती है तो सोचती नहीं है कि कहां से बहूंगी, किनारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पहले पक्के किनारे बनाओ तब हम बहेंगे, ऐसा किसी नदी ने कभी नहीं कहा। नदी बहती चली जाती है, किनारे बनते चले जाते हैं और अंततः नदी, क्यों ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि वो अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखे है और निरंतर काम कर रहे हैं। हम लोग लक्ष्य की तरफ दृष्टि तो रखते हैं लेकिन निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास नहीं करते। कोई व्यक्ति अपने घर की तरफ एक कदम रखे और दूसरे के घर की तरफ 100 धरे तो भैया कहां पहुंचे, दूसरे के घर है कि अपने घर। अरे मोटी मोटी बात है समझ में आने की, इसका मतलब यह है कि हमें अगर जहां पहुंचना है उस तरफ हमें अपने कदम निरंतर पीछे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, जिस तरफ जाना है उस तरफ ही मेरे कदम और निरंतर बढ़ना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी बहुत आवश्यक है। पुराने लोग कितने बढ़िया लोग होते थे, आज भी ऐसा नहीं है, हैं आज भी लोग हैं इस तरह के जिनके भीतर ऐसी पवित्र भावनाएं हैं, वो क्या करते थे, सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते थे, अच्छी सुबह है इसमें क्या धरा हुआ, वो तो कोई भी कह देगा कि अच्छी सुबह है, गुड इवनिंग कह दिया, अच्छी शाम है, ये ऐसा नहीं कहते थे। ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति है सुबह से उठे राम, सुबह से उठे जय जिनेन, ये ऐसा करते थे, मतलब सुबह से उठे हैं तो यात्रा शुरू है संसार की तो भी भगवान, किसी से रस्ते मिल गए जोहर जय जिनेन, नमस्ते नमस्ते नहीं करते थे। नमस्ते वाली परंपरा तो अब आज डेवलप हो गई, हेलो हाय वाली परंपरा, वो वाली नहीं है, इसमें क्या रखा हुआ, नहीं थोड़ा मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आज की नई पीढ़ी पर कोई कमेंट कर रहा हूं, हमें उस नई पीढ़ी को खुद सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, इससे क्या सेंस निकलेगा, हम जो भी बोल रहे हैं वो सेंसफुल तो हो। अब पहले के लोग बोलते थे जय जिनेन, कैसे हैं जय जिनेन, आपके भीतर बैठे हुए भगवान को मैं प्रणाम करता हूं और आप रिप्लाई दे रहे हैं कि मैं भी आपके भीतर बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूं, सबके भीतर उतनी ही ऊंचाई छूने की क्षमता है, हम दिन भर में सैकड़ों दफे उस ऊंचाई को छूने का स्मरण करेंगे ताकि ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो स्मरण है जो लगातार हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, शाम सोने लगे तब भी भगवान का नाम, सुबह जागे तब भी नाम, जिससे मिले उससे भी भगवान का ही नाम, और गद्दी पर चढ़े तो भी प्रणाम करके भगवान का नाम की बचाए रखना, बेईमानी के बहुत चांसेस हैं, दिन भर में मैं पता नहीं कितनी बेईमानी इस गद्दी पे बैठ के करूंगा, भगवान को फिर भी याद करता हूं कि जहां कहीं मैं चूक जाऊं वहां आप ही संभाल लेना, गद्दी से वापस लौटते समय भी प्रणाम करते हैं, कि प्रणाम, लौट रहा हूं, दिन भर में बहुत बेईमानी तो करी होगी लेकिन आपका ध्यान अभी तक गया नहीं है, मैं एक दिन आपके जैसा होऊंगा जरूर। बताइए आपकी क्या क्या सोच रहा होगा, क्या संस्कृति का कितनी ऊंचाई रही होगी उन लोगों के भीतर जिन्होंने इस तरह की प्रक्रिया बनाई। क्या जरूरत थी कि सुबह से भगवान का नाम और रात भगवान का नाम सोने से पहले जिससे मिले उसके साथ क्या जरूरत थी। कहते ये है कंटिन्यूटी, ये है निरंतरता, अपने कल्याण के लिए हम निरंतर चिंतित हैं, इसलिए बार बार वो बात हमारे दिमाग में आ जाती है। और इतने ही नहीं, पहले कह देते थे कि जाओ मंदिर जाओ और चंदन लगा करके आ जाना। क्यों लगा करके आ जाना, जब जब चंदन पर हाथ जाएगा तब तब भगवान की याद आ जाएगी। आज साइंस उसी को लॉ ऑफ एसोसिएशन की भाषा में कहता है, और पुराने लोग एक निरंतरता की बात करते थे कि वो एक स्मृति हमारे मन पर छाई रहे। हमें मालूम है कि हम बहिरात्मा हैं लेकिन हमारे अंदर क्षमता तो परमात्मा बनने की है, ये जो ख्याल है, ये जो दृष्टि है वो हमारे भीतर लगातार बनी रहे। शायद इसीलिए हम आज जो कर्म करते हैं वे हम अच्छे कर्म कम से कम लगातार नहीं कर रहे हैं, हम उनको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। बुरे कर्म, झूठ बोलना, चोरी करना या किसी को पीड़ा पहुंचाना, इनमें कहीं कोई कमी नहीं आती है, ये बहुत अभ्यस्त हैं हम इन कर्मों के लिए, कभी भी नहीं चूकते हैं। लेकिन जिन चीजों को हमें करना चाहिए उनमें हम चूक रहे हों, तो हमें जरूर से एक चीज आज अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए कि हमारे हमारे कर्म में और जो श्रेष्ठ कर्म हैं उनमें हमें निरंतरता बनानी चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी हम कोई कर्म करें तो उसको टालें नहीं। हम लोग फ्यूचर ओरिएंट हो जाते हैं, जैसे फ्रूट ओरिएंट होते हैं कि हम कर्म करने से पहले फल की आकांक्षा रख लेते हैं। वो भी हमने पिछले बार समझा था कि ये अच्छी चीज नहीं है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा और हम बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। अब चाहे आप पहले से दिमाग में बना लो कि अच्छा करने का फल मुझे अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सो डेफिनेट मिलने ही वाला है, तो हम फल की आकांक्षा ना करें। आज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हम कल पर ना टालें। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि जब भी मन में आए कि ये व्रत, ये नियम, ये संयम मुझे पालन कर लेना चाहिए, फौरन उसी समय आगे पीछे भी मत देखो, क्योंकि अपने ही मन का भरोसा नहीं है। ये सवेरे कुछ कहता है और दोपहर में कुछ होता है, शाम होते ना होते अपने मन का कोई हिसाब नहीं रहता। कम से कम अच्छी बात को तो वो सुबह से शाम तक मैनेज कर ही नहीं सकता, बुरी बात को तो मेंटेन कर लेगा वो सुबह से शाम तक कंटिन्यू, लेकिन अच्छी बात को तो मन फौरन, क्योंकि ये अवसर्पणी काल है भैया, दुख मिलना ही है और कोई और नहीं देगा। अपने ही ऐसे काम करेंगे उपद्रव के कि अपने लिए दुख निर्मित करेंगे और कुछ नहीं है, और बिल्कुल ही ईमान चारित्र है। आज जितना बढ़िया लग रहा है कल उतना बढ़िया लग ही नहीं सकता, अगर लग जावे तो उत्सर्पणी काल नहीं हो जाए, अवसर्पणी है, घटिया से घटिया होना है। जितना आज अच्छा है कल उससे घटिया भले ही मालूम ना पड़े लेकिन उसमें थोड़ी कमी आ ही जाएगी। वो तो तीर्थंकर की हैसियत के लोग होते हैं, महापुरुष जिनका वर्धमान चारित्र होता है, जिन क्षणों दीक्षा लेते हैं उस समय की विशुद्धि और अगले अगले क्षण विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। यहां तो व्रत नियम संयम लेने के बाद विशुद्धि बढ़ती कम है, घटती ज्यादा है। फिर भी हमें अपने लिए जीवन के कल्याण के लिए व्रत नियम संयम का मन बन जावे तो फौरन ले लेना चाहिए और उसको कल पर नहीं टालना चाहिए। क्या हुआ, एक बार एक घटना हुई, एक व्यक्ति, बहुत तूफान आया, आंधी आई तो सब चौपट हो गया मामला, मकान वकान गिर गए तो बहुत लोग दब गए मकान के नीचे, मरे कि नहीं मरे अब पता नहीं उस घटना के दौरान, लेकिन घायल बहुत हो गए। तो बाद में जब लोग आए उन्होंने मलबा वलवा हटाया तो उसमें देखा कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और बेहोश सा हो गया, उसको होश में लाए। जब होश में लाए तो उसने कहा पानी, भूख लगी हुई है, तीन दिन हो गए थे, तीन दिन से पड़ा हुआ था वो, तो भूख लगी है और पानी पिला दो। तो लोग पानी तो पिला दिया लेकिन अब रोटी का इंतजाम वहां कहां से करेंगे। तो फिर भी उन्होंने देखा कि वो आदमी, उसके हाथ में देखा कि उसके हाथ में तो रोटियां हैं, दो तीन रोटियां उसके हाथ में थी, तो फौरन जो है उन लोगों ने उसको बिठाल करके उससे कहा कि सुनो, तुम तो खुद अपने हाथ में रोटी लिए हुए हो, दो तीन रोटियां हैं, तुम ये जब तक खा लो हम दूसरा हो। उसने कहा, ओ नो नो, ये तो मैं खा ही नहीं सकता हूं, ये तो जब कोई बहुत बड़ी विपत्ति आएगी ना तब बचा के रखी मैंने उस समय। अब विपत्ति अभी आई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो हमने बहुत बड़ी विपत्ति जब आएगी, जब मरे जाएंगे तो क्या काम की फिर वो। लेकिन हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, ये अपन को घटना सुनकर के हंसी आएगी उसकी बुद्धि पर, गैर बुद्धिमानी पर हंसी आएगी कि बुद्धू आदमी मर रहा है और रुके है कि ये रोटी उस समय बचा के रखी। हम लोग भी तो इसी तरह फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, हम भी तो टालते रहते हैं, विपत्ति सामने है और हम अपना अहित सामने सामने देख रहे हैं, लेकिन अपने हित के लिए कल कर लूंगा, आज तो नहीं कल कर लूंगा। अरे भाई, जब हमें अपना अहित आज ही समझ में आ रहा है तो हम अपने हित के लिए आज ही क्यों ना शुरू कर ले। हमें किसका इंतजार है, कौन आकर के हमें सलाह देने वाला है। हमारा जीवन का अनुभव स्वयं हमें बहुत बड़ी सलाह देता है। तो दूसरी बात, हमें यह भी विचार करना चाहिए भाई, कितनी भी बढ़िया बात मैं आपसे कहूं या कि मेरे दिमाग में जो आती है मैं आपसे कह रहा हूं, पर कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें और आप इन सबको कर पाएंगे, मैं जानता हूं। लेकिन एक विचार है, शायद कभी हमारे मन में स्ट्राइक कर जाए और शायद कभी हम इस तरफ प्रेरित हो जाएं, संभव है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भी शायद इसीलिए होती है, वे भी जानते हैं कि कितने भव्य हैं कितने अभव्य हैं, कौन कौन सुन के मानने हैं कौन कौन सुन के नहीं मानने आए। तो लेकिन फिर भी हम सबका फर्ज है कि हम इन सब बातों पर गौर करें और अपनी अपनी क्षमता को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसको फॉलो करने की भी कोशिश करें। दूसरी बात जो अपन ने सीखी, बहुत अच्छे से समझ में आई कि हाँ, हमें जो अच्छा हमारे जीवन में है उसको कल पर नहीं डालना है, हमें आज ही और तुरंत ही करने के लिए तत्पर रहना है। और तीसरी बात यह है कि हम देखें कि हमने क्या पाया, हमें क्या पाना है और जो हमें पाना है उसके लिए प्रयत्न हमारा कितना है। देखो कैसी बात है, बिल्कुल रोज समझ में आने वाली बात। हमने क्या पाया, हमने क्या पाया, हमको हाथ मिले हैं ठीक ठाक मिले हैं, पैर मिले हैं वो भी ठीक ठाक है, आंख भी ठीक ठाक है, बोल भी पा रहे हैं, कान सुन लेते हैं, पांच इंद्रियां मिली हैं, पूरा शरीर मिला है, ठीक है। थोड़ा किसी को कमजोर मिला होगा, थोड़ा किसी को मजबूत मिला होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। पांच इंद्रियां मिली हैं जिनसे कि काम करना होता है, मन मिला हुआ है, ये सब हमको कैसे मिला। हमने कुछ ना कुछ पहले कुछ अच्छा करा होगा तब तो मिला, ऐसे फोकट में तो किसी को मिलता नहीं कि कोई दे रहा हो बट रहा हो वहां पर और हम खड़े हो गए लाइन में जरा आगे इसलिए हमारे हाथ पे ज्यादा दर्द दिया हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आप आगे कभी ऐसा सोचिए, जो कुछ भी हमने पाया है यहां पर हमारी वर्तमान की मेहनत से या कि हमने अपने पूर्व जीवन में जो मेहनत की है उससे पाया है, हमारी ही मेहनत। एक मेहनत है जो कि हम वर्तमान में करते हैं, उससे जो पाते हैं वो हमेशा कम मालूम पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये है ही, ऐसा ही है। हम जितना वर्तमान में करते हैं उसका जो रिटर्न मिलता है वो हमें हमेशा कमती मालूम पड़ेगा। इसलिए मैंने ये कहा ही नहीं कि हमने जो वर्तमान में पाया है उसको देखें, नहीं, हमने जो लेकर के आए हैं जन्म के साथ वो हमने कहां से पाया है, ये तो हमने अर्जित नहीं किया अभी वर्तमान में कि कोई हमने हम हाथ मिलते हो और वहां हमने मेहनत करके पैसे कमाए और फिर ये हाथ खरीदा और यहां लगा दिया, ऐसा तो है नहीं है? हाथ में कपड़े जरूर हमने अर्जित किए होंगे पहनने के लिए, या कि अंगूठी है या कि घड़ी पहनने के लिए अर्जित की होगी, लेकिन हाथ अर्जित करने के लिए मैंने कौन सी मेहनत की है, इस जीवन में मैंने कोई मेहनत नहीं की। पहले के जीवन में मैंने जो मेहनत की है उसकी बात मैं कर रहा हूं, मुझे जो जो यहां उपलब्धियां हुई हैं उन सब के लिए मैंने पहले कितना कितना उद्यम किया होगा, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इस तरफ ध्यान चला जाए तो फिर आनंद आना शुरू हो जाए, फिर अपनी उपलब्धियों पर हमें संतोष होगा। अभी तो हमें असंतोष ही असंतोष है कि हमने क्या मिला, हमको कुछ भी नहीं मिला, नहीं, हमने दो हाथ दो पैर पूरा शरीर स्वस्थ या कि जो मन हमारे लिए मिला है और सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिला हुआ है, दो बातें कान में अच्छी सुनने का अवसर मिला है और हमारी अपनी बुद्धि में अभी बिगाड़ नहीं आया है, हम उस अवसर का लाभ भी उठाने की क्षमता रखते हैं, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इस सब के लिए हमारा पूर्व में अर्जित कोई ना कोई पुरुषार्थ जरूर है। ऐसा विचार करना चाहिए। इस विचार करने से क्या होगा, आगे के लिए अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए कह रहा हूं, तो जो पाया उसे देखना, जो नहीं पाया उसके लिए मैं क्या प्रयत्न कर सकता हूं और मैंने कितना प्रयत्न किया है, ये दूसरा स्टेप। मुझे क्या पाना चाहिए, मुझे पाने योग्य क्या है, अब ये हर एक व्यक्ति का अपना अपना है। किसी के पास में गाड़ी नहीं होगी तो वो सोच रहा होगा कि एक ठो गाड़ी हो जाएगी, यही मुझे पाना है। हैं? किसी के पास में गाड़ी होगी और एक होगी तो वो सोच रहा होगा कि दो होंगी, लेकिन ये अल्टीमेटली इसको क्या हम पाना मानेंगे क्या? नहीं, ये वाला पाना तो वास्तव में, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूं आपको कि ये पाना पाना नहीं है, नहीं तो आप कहो कि महाराज आपके पास कछु नहीं है सो आपको सब हरा हरा और लग रहा हूं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। आप एक एक लिमिट तो होगी कि हमको ये पाना है, उसके पा चुकने के बाद भी क्यों अतृप्ति रह जाती है? क्या कुछ ऐसा है जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता? सचमुच में पाना तो वही है जो मुझे संतोष हो जाए, जिसके बाद फिर किसी चीज की आकांक्षा मन के भीतर ना उठे, सचमुच वो पाना। सबकी कोशिश तो यही है, लेकिन क्या करें, जो कुछ भी यहां पाते हैं एक अतृप्ति ही अंत में हाथ लगती है। इससे हमने कई बार अनुभव करके देखा है, अपन को अपने अनुभव से लाभ लेना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमको क्या पाना है और जो पाना है उसके लिए मेरा प्रयत्न कितना है। प्रयत्न बहुत थोड़ा सा करते हैं अपन, इच्छा अपनी बहुत होती है कि सचमुच मुझे पाना तो है। जैसे कि अपन सोच रहे हैं कि जीवन को अच्छा बनाना, चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेरा प्रयत्न कितना है, इस पर अपन विचार ही नहीं करते। नहीं, मुझे अच्छा तो बनाना है, मुझे अच्छा तो बनाना है, मैं बहुत विचार कर रहा हूं, जब भी अपन बैठेंगे तो यही विचार करेंगे, मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना। अच्छी बात भी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरा प्रयत्न कितना है? दिन भर मैं एकाध कदम उस अच्छे बनने की तरफ बढ़ाता हूं कि नहीं, कोई एक अच्छा काम करता हूं कि नहीं? जिन कामों को मैं अच्छा मानता हूं वो एक काम मुझे रोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये इतनी छोटी सी बात, लेकिन इतना भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तब तो फिर हमारा कोई अच्छा सोचने का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, इससे क्या होता? अच्छी बात सोच करके उस अच्छी बात को पाने के लिए जरूर से प्रयत्न करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अच्छी बात पाने के लिए बुरी बात छोड़ना भी जरूरी है। अपन तो जो है ना, वो बच्चे जैसा हिसाब है कि वह खट मिठी लगती है इमली, सुबह भी हाथ में रखें, मताई कितव हटके के भैया जा फेंक दो, हम तुम्हें रसगुल्ला देंगे, आहा ये हाथ में दे दो का भरोसो तुम्हारा, जा हम लाए रहे अपनी। तो भैया उते तो फिर भी ठीक है कि दो हाथ मिले, सो एक में मताई से घर वालू रसगुल्ला और दूसरे में मैं अपनी खट्टी मिठ्ठी ले रहा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, एक हाथ में संसार और एक हाथ में मुक्ति, ये दोनों एक साथ दी नहीं जा सकती है। दो में से एक को ही चुनना पड़ेगा, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में से, अच्छे और बुरे में से। जब जब हम अच्छा चुनेंगे तो हमको बुरा छोड़ने की तत्परता भी रखनी पड़ेगी। हमें मन बनाना पड़ेगा कि नहीं, आज एक अच्छा काम करना है, इसलिए एक बुरा काम तो मेरे पास वक्त ही नहीं है उस बुरे काम को करने का, क्योंकि मुझे आज एक बहुत अच्छा काम करना। इतनी बात अगर अपन सीख लें, क्या हुआ था एक बार, एक भिखारी था, वो रस्ते से जा रहा था, उसने एक सेठ जी से पैसे मांगे और वो बहुत सुंदर था वो भिखारी। तो सेठ जी को लगा कि नहीं, हो ना हो ये किसी अच्छे घराने का होगा, लेकिन अब किसके साथ नहीं मजबूरी होती है, भीख मांगने लगा होगा। उससे पूछा तो लगा कि बात भी अच्छी करता है और सुंदर भी है, क्यों ना इसको अपने घर में रख लिया जाए और अपने पुत्रवत उसको लालन पालन किया जाए। हैं? तो उसने भिखारी से कहा कि मैं तुम्हें अपना पुत्र बना लूं और अपनी संपत्ति दे दूं तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, क्या करेंगे, आपके पुत्र बन के रहेंगे। वो बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने कहा बस तो ठीक है, फिर तय हो गया मामला, और किससे क्या कहने जाना। तो उसको बुला लिया, अपने नौकरों को बुलाया सेठ जी ने कि इसको नहलाओ धुलाओ और इसके कपड़े अपड़े वो पुराने वाले हटाओ और सब, और अच्छे कपड़े पहनाओ। तो ले गया उसको भीतर। अब जैसे उसके वो पुराने खटे फटे कपड़े उतारने लगे और वो जो कटोरा था वो लेने लगे, तो वो तो चिल्लाने लगा और रोड पे बाहर आ गया कि देखो सेठ जी को बने फिरा, सेठ जी हम सब लूटे लिए। अब बताओ आप, वो हमारा कटोरा छुड़ाए ले, हमारे कपड़ा लगता जो हथे भी छुड़ाए ले। अब उसको क्या विश्वास दिलाएं कि बाबा अगर तुम्हें सेठ जी का बेटा बनना है और धनपति बनना है तो ये पुरानी सड़ी सड़ी चीजें तो देख नहीं पाएंगी, नहीं ये भी हमारी बनी रहे और सेठ जी के लड़का भी खराब है, तो दो ही काम एक नहीं। जैसे जैसे इस उदाहरण से हमें लगता है कि कैसा बुद्धू होगा, ऐसे ही तो हमारे आचार्य महाराज और भगवान हमें देख करके हमारे बुद्धू बने पर हंसते होंगे कि अरे ये आत्मा चाहती तो अपना कल्याण है लेकिन अपनी अकल्याण की रास्ते को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं है, अपनी टेक नहीं छोड़ती है, अपनी जो मन की विकृतियां हैं उनको नहीं हटाने के लिए प्रयत्न करती है। शायद यही तो हम सबके साथ है, कोई बात नहीं, कोई बहुत बेजा बात नहीं है। हम जिस दिन ठान ले, मुझे तो ये हमेशा लगता है कि जिस दिन जो व्यक्ति ठान ले, तय कर ले कि उसे तो अपने जीवन को अच्छा ही बनाना है और अपनी बुराइयों को एक एक करके, भैया सर्वगुण संपन्न तो भगवान के अलावा इतने संसार में कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। आप किसी व्यक्ति को भी उठा के देख लीजिए, चार अच्छाइयों के पीछे एक बुराई उसके भीतर जरूर होगी, पांचों की पांचों अच्छाइयां उसके भीतर नहीं होंगी, अपनी पांच ही उंगलियां भी अपनी बराबर नहीं होती भैया। तो इसलिए अपने भीतर ये झांक करके देखना चाहिए। एक व्यक्ति ने गणित का हिसाब लिखा कि 9 वर्ष के हते सो बुराइयां ही बुराइयां सबरी, 18 के हो गए तो कम से कम एक अच्छाई 8 बुराई, 27 के हो जाओ तो 2 अच्छाई 7 बुराई, 36 के हो जाओ तो 3 अच्छाई 6 बुराई, 45 के हो जाओ तो 4 और 5, और 54 के हो जाओ तो 5 और 4, और 63 के हो तो 6 अच्छाई और 3 बुराई। अब किनको है 63 को जा बताओ, 72 वालों के अंदर 2 बुराई 7 अच्छाई, 90 तक पहुंचते पहुंचते सब अच्छाई हो जावे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे जीवन का अनुभव बढ़ता जाए, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाए, हमारे भीतर क्वालिटेटिव चेंजेस आना चाहिए। हम लोग बाह्य परिवर्तन तो करते हैं लेकिन आंतरिक जो हमारे भीतर गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए वो कम है, उसका रेशियो कम है। अपन बढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आखिरी बात की मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे जीवन का अनुभव बढ़ता जाए, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाए, हमारे भीतर क्वालिटेटिव चेंजेस आना चाहिए। हम लोग बाह्य परिवर्तन तो करते हैं लेकिन आंतरिक जो हमारे भीतर गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए वो कम है, उसका रेशियो कम है। अपन बढ़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आखिरी बात कि ये सब बातें जो अपन कर रहे हैं वो कब तक अच्छी लगती हैं, जब तक जीवन है। तो भैया जब तक जीवन है तभी तक मुझे जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त कर लेने के लिए उद्यम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा जीवन इसी सोच में गुजर जाए कि मुझे अच्छा तो करना है, मुझे बुरा तो छोड़ देना है, मुझे अहंकार पूर्वक भी नहीं करना है, मुझे लगातार करना है, सब बातें सीख ली, मुझे कल पे भी पोस्टपोन नहीं करना है। ये सीखने सीखने वाली प्रक्रिया पूरे जीवन न चलती रहे, मुझे अपने जीवन में जान करके और चलने के लिए प्रयत्न भी। तो आखिरी पॉइंट था आज जो मैं सोच के आया था कि कर्म जो मुझे करना है मुझे ध्यान रहे कि मरण से पहले कर लेना है। मरण से भयभीत नहीं हूं मैं कि मरण आ जाएगा, नहीं, मेरे पास टाइम ही इतना है कि मेरा जब मरण आएगा उसके पहले पहले मुझे जो काम करना है वो जरूर से कर लेना है। ये अगर ध्यान रहे तो हम बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे। मैं एक आखिरी घटना आपसे कहूं, जब मरण की बात आई है, एक एक व्यक्ति था, बहुत बहुत फेमस वो आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा कलाकार था और बहुत अच्छे ड्राइंग वो बनाता था, अच्छी चित्रकारी करता था। एक दिन वो अपने चित्र के प्लॉट के लिए बाहर घूम रहा था कि शायद कोई बढ़िया सा दिमाग में दृश्य आए और मैं उसको बनाऊं। तो वो जब बाजार में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति की दोनों आंखें गायब हैं। वो गौर से देखता रहा कि उसको दिखता नहीं है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनुष्य ऐसा भी हो सकता है कि उसकी दोनों आंखें ना हो। वो सोच में पड़ गया। ये जितने भी आर्टिस्ट किस्म के लोग होते हैं बहुत विचारशील तो बहुत होते हैं और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच भी होता है, दार्शनिक भी होते हैं। तो वो अपने भीतर सोच में पड़ गया कि कभी अगर मैं इस तरह से हो गया तो क्या होगा, फिर जीवन का क्या मतलब, आंखें ही नहीं रहेंगी तो क्या मतलब। अभी उसकी आंखें दोनों सलामत हैं लेकिन उसके भीतर एक दिमाग में बात आ गई कि क्या पता मेरी आंख नहीं हुई अगर तो क्या करूंगा। थोड़ा सा निराश हो गया। आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक व्यक्ति का हाथ ही नहीं है। उसने कहा अरे ऐसा भी हो सकता है मनुष्य कि उसका हाथ ना हो, और अगर मेरा हाथ नहीं होगा तो अरे तो फिर जीवन से क्या मतलब। एक और व्यक्ति मिला, उसका दूसरा हाथ भी नहीं था, दोनों ही नहीं थे। एक व्यक्ति मिला जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो वापस घर लौट आया, उसने अपना सारा रंग रोगन ब्रश ब्रश और कैनवास सब एक तरफ डाले, उदास कमरे में न खाता न किसी से बात करता। कभी कोई उससे कहता भी कि क्यों क्यों नहीं बनाते अब चित्र, तो वो क्या कहता, क्या मतलब है जीवन का, आंख ही नहीं होगी तो क्या करूंगा, हाथ ही नहीं होंगे पैर ही नहीं होंगे तो क्या करूंगा, ऐसे जीवन से क्या मतलब है। ऐसा उसको लगने लगा। तो लोग भी कहते कि हां बात तो सही है, किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि आंख ना हो, किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि हाथ ना हो। अपन लोग बड़ी निश्चिंतता से जीते हैं, अपन लोग कभी नहीं सोचते हैं ये चीज कि कभी आंख नहीं होगी कल खुली नहीं अगर तो नहीं, अपने को कोई भय नहीं है। अपन लोग सारा प्लान करके सोते हैं रात में कि सुबह से उठ करके कल कितना कितना करना है, जो कि पता नहीं है कि कल सुबह आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। 27 तारीख का अनाउंस कर रहे हैं और कोई भरोसा नहीं है कि अभी अभी कोई मैंने इतना इतना कॉन्फिडेंस इन मामलों में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, अपने जीवन के कल्याण के मामले में भी इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम दुनिया के सब कामों में इस तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें हमेशा इस बात की चिंता रहनी चाहिए। चिंता मतलब इस बात का विचार हमारे भीतर रहना चाहिए कि मुझे ये काम कब तक समेट लेना है, मेरी सांस हो सकता है कि आज शाम को ही रुक जाए तो मुझे शाम से पहले अपना काम कर लेना, उसमें डरने की क्या बात, किसी से कहने तो ही जाना है कि भैया हमारी सांस शाम को ने रुक जाए तो रुक जाएगी, थी उतनी हमारे पास तो उतनी थी हमने जी ली। वे डरे मरने से जो मरने से पहले कुछ नहीं कर पाते हैं। हम क्यों डरे मरने से, हमें मरने के पहले जो कर लेना चाहिए वो हमने कर लिया, अब आए मृत्यु तो आती रहे, ये हमारा विचार होना चाहिए। तो लेकिन वो तो घबरा गया कि आंख चली जाएगी तो क्या करूंगा। उसके गुरु तक ये बात पहुंची और ये भी पहुंची कि उसने तो सब कुछ बंद कर दिया है बनाना, कैसे समझाएं उसको। लोग तो उसको समझाते थे कि नहीं नहीं कोई डरने की बात नहीं, तुम्हारी आंख तो भी सब ठीक है, कौन आंख फूट रही है तुम्हारी, हाथ थोड़ी टूट रहे हैं तुम्हारे, ऐसा कहते थे, कोई ये नहीं कहता था कि टूट सकते। गुरु आए, उन्होंने कहा कि क्यों क्या बात है तुमने चित्र बनाना बंद कर दिया। तो बोलता गुरु जी किसी भी दिन आंख फूट सकती। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है फूट सकती। उसको ये पहला आदमी मिला जो ये कह रहा हो कि हाँ फूट सकती, बाकी लोग से जिससे कहता था तो वो यही कहता था कि तुम्हारी अरे ऐसे नहीं फूटती, अभी नहीं फूटेगी, तुम डरो मत। गुरु जी ने कहा कि हाँ फूट सकती, हो सकता है सुनो आज शाम को ही फूट जाए। अब तो वो और मुश्किल में पड़ा, और गुरुजी हमने तो देखा है एक व्यक्ति को उसके दोनों हाथ नहीं, हो सकता है तुम्हारे भी दोनों हाथ ना हो, हो सकता है कल सुबह ही तुम्हारे दोनों हाथ ना हो गायब हो जाएं। तो अब ऐसा उनने कहना शुरू किया तो वो बहुत सख्ती में आ गया। गुरुजी ने कहा कि सुनो इसीलिए मैं आया हूं कि हो सकता है कि शाम तुम्हारी आंख गायब हो जाए, तुम्हारी रोशनी चली जाए, कल सुबह तक हो सकता तुम्हारे दोनों हाथ न रहें दोनों पैर न रहें, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि ये जब तक तुम्हारे पास हैं तब तक तुम अपना कोई चित्र तो बना लो, कोई आखिरी चित्र तो बना लो, जब तक ये आंखें कायम हैं जब तक ये हाथ तुम्हारे पास हैं। कहानी कुल इतनी सी है भैया, और उसने उसी दिन चित्र बनाना शुरू कर दिया। पता था खुश था कि हो सकता है कि कल मेरी आंख न रहे, इसलिए मैं तो आज पूरी रात बनाऊंगा चित्र क्योंकि मेरे पास अभी आंख है। मेरे पास अभी जीवन है, इसलिए मुझे अपने इस जीवन को अच्छा बना लेना है। जब तक मेरे पास सांसें हैं तब तक मैं एक एक सांस को करीने से सजाऊंगा, एक एक सांस में संगीत भरूंगा। अगर ये आ जाए तो फिर देखिएगा, आज ही से शुरू करिएगा, फिर देखिएगा कल तक मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। एक काम छोटा सा करके और पूरे मन से पूरे उत्साह के साथ, और फिर उसी मजा देखिएगा। चाहे हम भगवान को हाथ जोड़ के खड़े हैं तब भी हम आनंदित हैं। सारी दुनिया की चिंताएं छोड़ करके हमने कितने बढ़िया से आज हाथ जोड़े, भगवान को माथा झुकाया है, भगवान की स्तुति में दो श्लोक गाए हैं हमने, और हम खुश हैं। इतना छोटा सा काम हमको खुशी दे सकता है, बशर्ते कि हम उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को, उसके आनंद को जान सकें। मैं सोचता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि हमको कर्म तो करना है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से और बहुत अच्छे से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना है। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन अच्छा हो, हम जल्दी से अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकें, इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार। ओम
Yeah.
शरणम पवज्ञा केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्ञा धम्मम शरणम पवज्ञा। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी
good.